ये आकाशवाणी दिल्ली है। सर्वोच्च न्यायालय ने नीट यूजी पेपर लीक मामले में केंद्र सरकार, सीबीआई और राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी को रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया। दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने मुख्य सचिव और शिक्षा विभाग को शिक्षक तबादले पर पुनर्विचार करने को कहा। सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र को महिला कर्मचारियों के लिए मासिक धर्म अवकाश पर नीति तैयार करने का निर्देश दिया। उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने राजधानी में सार्वजनिक मनोरंजन पोर्टल लॉन्च किया। इससे मनोरंजन गतिविधियों का लाइसेंस आवेदन आसान होगा और आईआईएमसी ने उर्दू पत्रकारिता पाठ्यक्रम के लिए प्रवेश प्रक्रिया शुरू की। फॉर्म भरने की अंतिम तारीख 19 जुलाई, परीक्षा 21 जुलाई को होगी। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। सर्वोच्च न्यायालय ने राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट यूजी पेपर लीक मामले में केंद्र सरकार और राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए से न्यायालय में रिपोर्ट दाखिल करने को कहा है। शीर्ष अदालत ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई से मामले में अब तक की जांच पर एक स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने का भी निर्देश दिया है। सर्वोच्च न्यायालय ने एनटीए, केंद्र सरकार और सीबीआई को बुधवार शाम 5 बजे तक अपनी रिपोर्ट पेश करने को कहा है।
मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ नीट यूजी परीक्षा से संबंधित याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें परीक्षा में हुई कथित अनियमितताएं और कदाचार का आरोप तथा परीक्षा को नए सिरे से आयोजित करने का निर्देश देने की मांग भी शामिल थी। मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि ये तथ्य संदेह से परे है कि परीक्षा की पवित्रता से समझौता किया गया है। उन्होंने कहा कि हालांकि दोबारा परीक्षा का आदेश देने से पहले पेपर लीक कहां से हुआ ये पता होना जरूरी है। शीर्ष अदालत ने कहा कि परीक्षा रद्द करना अंतिम उपाय है। इस मामले में अब अगली सुनवाई बृहस्पतिवार को होगी। एनटीए देश भर के सरकारी और निजी संस्थानों में एमबीबीएस, बीडीएस, आयुष और अन्य संबंधित पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए राष्ट्रीय पात्रता और प्रवेश परीक्षा नीट यूजी का आयोजन करती है। प्रादेशिक समाचार के लिए समाचार कक्ष से प्रियंका अरोड़ा।
दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने मुख्य सचिव और शिक्षा विभाग को निर्देश दिया है कि वो 5,000 शिक्षकों के तबादलों पर पुनर्विचार करें। शिक्षकों, शिक्षक संगठनों और भारतीय जनता पार्टी के सांसदों ने कल इस संबंध में श्री सक्सेना से मुलाकात की थी। सभी लोगों ने उपराज्यपाल से अनुरोध किया था कि वे इन शिक्षकों के तबादले पर रोक लगाएं। प्रतिनिधिमंडल में भाजपा सांसद मनोज तिवारी, योगेंद्र चंदोलिया, कमलजीत सहरावत और बांसुरी स्वराज मौजूद थे। राजधानी में पिछले कई दिनों से शिक्षकों के तबादले को लेकर सियासत का दौर जारी है। दिल्ली की शिक्षा मंत्री आतिशी ने आरोप लगाया था कि मनमाने तरीके से इन शिक्षकों का तबादला कर दिया गया है। उन्होंने आज मीडिया से बातचीत में आरोप लगाया कि दिल्ली की शिक्षा व्यवस्था को खराब करने के लिए शिक्षकों का तबादला किया गया। उन्होंने दावा किया कि आम आदमी पार्टी के दबाव के कारण शिक्षकों के तबादले पर रोक लगी है।
मैंने दिल्ली के लोगों से वादा किया था, दिल्ली के टीचर्स से वादा किया था, दिल्ली के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों और उनके माता पिता से वादा किया था कि चाहे भारतीय जनता पार्टी कितने भी षड्यंत्र रच ले, हम दिल्ली के सरकारी स्कूलों को बर्बाद नहीं होने देंगे, इस शिक्षा क्रांति पर रोक नहीं लगने देंगे। हमारा संघर्ष आज भारतीय जनता पार्टी को अपने एलजी साहब के माध्यम से इस ट्रांसफर के आदेश को वापस लेना पड़ा।
दिल्ली प्रदेश भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने उपराज्यपाल के निर्णय का स्वागत किया है। श्री सचदेवा ने कहा कि शिक्षा मंत्री आतिशी का अपने विभाग के अधिकारियों के साथ तनावपूर्ण कार्य करने के कारण ही हाल ही में शिक्षकों का बड़े पैमाने पर स्थानांतरण हुआ। उन्होंने आरोप लगाया कि इससे पहले शिक्षा मंत्री लगातार ये सवाल उठा रही थी कि शिक्षक दशकों तक एक ही स्कूल में काम क्यों करते रहते हैं। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि श्रीमती आतिशी कहती थी कि शिक्षकों सहित हर सरकारी कर्मचारी का 3 साल बाद स्थानांतरण होना चाहिए, जिसने अधिकारियों को स्थानांतरण का आदेश देने के लिए मजबूर किया। श्री सचदेवा ने आतिशी से आग्रह किया कि वे शिक्षकों को गुमराह करना बंद करें और उनसे आह्वान किया कि वे पहले सेवा नियमों और विनियमों में बदलाव करें। सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र को निर्देश दिया है कि वो राज्यों और अन्य हितधारकों के साथ परामर्श करके महिला कर्मचारियों के लिए मासिक धर्म अवकाश पर एक मॉडल नीति तैयार करें। मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्र की पीठ ने आज मासिक धर्म अवकाश नीति की मांग करने वाली जनहित याचिका का निपटारा किया। महिला और बाल विकास मंत्रालय को इस पर एक नीति तैयार करने के लिए हितधारकों के साथ बैठकें आयोजित करने का निर्देश दिया। पीठ ने कहा कि नीति से जुड़ा यह मुद्दा अदालतों के संज्ञान का मुद्दा नहीं है। महिलाओं को ऐसी छुट्टी देने पर अदालत का निर्णय प्रतिकूल और हानिकारक साबित हो सकता है, क्योंकि नियोक्ता उन्हें काम पर रखने से बच सकते हैं। शीर्ष अदालत ने कहा कि ये निर्देश राज्य सरकार को मासिक धर्म अवकाश की नीति पर स्वतंत्र निर्णय लेने में बाधा नहीं बनेगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी दिल्ली है। दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने आज सार्वजनिक मनोरंजन पोर्टल का नई दिल्ली नगर पालिका परिषद के कन्वेंशन सेंटर में उद्घाटन किया। इस पोर्टल के तहत मनोरंजन गतिविधियों के लाइसेंस लेने के लिए लोगों को ऑनलाइन एक ही पोर्टल में सारी प्रक्रिया प्राप्त होगी। एनडीएमसी ने बताया कि एकीकृत पोर्टल कागजी कार्रवाई को काफी कम कर आवेदन प्रक्रिया को सरल और सुव्यवस्थित बनाएगा। इसके तहत आवेदनकर्ताओं को एनडीएमसी, एमसीडी, दिल्ली अग्निशमन सेवा और दिल्ली पुलिस जैसे विभिन्न नियामक प्राधिकरणों के कार्यालयों में एक एक कर जाने के बजाय एक ही मंच पर एकीकृत करके ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। इस अवसर पर श्री सक्सेना ने कहा कि सार्वजनिक मनोरंजन पोर्टल के जरिए भ्रष्टाचार, अत्यधिक नौकरशाही और बिचौलियों से उद्यमियों को राहत मिलेगी। उपराज्यपाल ने कहा कि इसके साथ साथ उद्यमियों के लिए मनोरंजन से जुड़े व्यवसायों और गतिविधियों जैसे नृत्य, नाटक और गायन प्रदर्शनियों को शुरू करना काफी आसान होगा।
पहले अलग अलग इवेंट्स के लिए लाइसेंस लेने की प्रक्रिया ऑनलाइन थी, लेकिन इससे जुड़े बिल्डिंग डिपार्टमेंट, फायर डिपार्टमेंट, इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट जैसी दूसरे विभागों से एनओसी की प्रक्रिया पाना जो है ऑफलाइन हुआ कर, जिसकी वजह से यहाँ डिले होती थी। और मुझे बताया गया कि कभी कभी 6 से 8 महीने एक लाइसेंस को लेने में लग सकते। ये कहीं ना कहीं दिल्ली में कारोबार में जो मुश्किलें थी उसको बढ़ावा दे रहा था। इसीलिए जो आज पोर्टल जो लॉन्च किया गया है उससे अब हमारे जो उद्यमी हैं उनको बहुत फायदा होगा और सब कुछ ऑनलाइन हो जाने की वजह से उन्हें कहीं किसी के पास जाने की जरूरत नहीं।
प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। भारतीय जनसंचार संस्थान IIMC ने अपने उर्दू पत्रकारिता पाठ्यक्रम के स्पॉट राउंड के तहत प्रवेश प्रक्रिया शुरू कर दी है। जिन अभ्यर्थियों का चयन उर्दू पत्रकारिता पाठ्यक्रम के पहले राउंड में नहीं हुआ था वे अब स्पॉट राउंड के तहत संस्थान में दोबारा दाखिले की कोशिश कर सकते हैं। IIMC ने बताया कि फॉर्म भरने की आखिरी तारीख 19 जुलाई है और प्रवेश परीक्षा 21 जुलाई को संस्थान के नई दिल्ली परिसर में आयोजित की जाएगी। उर्दू पत्रकारिता IIMC के नई दिल्ली कैंपस में ही पढ़ाया जाता है। अधिक जानकारी के लिए IIMC की आधिकारिक वेबसाइट पर आप जानकारी ले सकते हैं। विश्व प्रसिद्ध रूसी लेखक अंतोन चेखव के नाटक द सीगल के हिंदी अनुवाद का प्रदर्शन राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के परिसर में किया जा रहा है। नाट्य विद्यालय के तृतीय वर्ष के छात्रों द्वारा प्रस्तुत ये नाटक कल शाम 6:30 बजे प्रतिदिन प्रदर्शित किया जाएगा। इसके अलावा कल इस नाटक का अतिरिक्त प्रदर्शन दोपहर 3:30 बजे भी होगा। द सीगल नाटक के टिकट NSD परिसर के रिसेप्शन से 11:00 बजे से दोपहर 1:00 बजे तक और दोपहर 2:00 बजे से शाम 5:00 बजे तक खरीदे जा सकते हैं। नाटक के टिकट ₹50, ₹30 और ₹20 की दर पर उपलब्ध होंगे। दिल्ली की महापौर डॉ शैली ओबेरॉय ने आज नेता सदन मुकेश गोयल के साथ राजधानी के सिविक सेंटर में दिल्ली नगर निगम के तमाम अधिकारियों को बुलाकर दिल्ली में साफ सफाई और सभी 12 जोन में बने कचरा संवेदनशील बिंदुओं को लेकर चर्चा की। एक प्रेस वार्ता में डॉ ओबेरॉय ने बताया कि शहर के हर वार्ड में इन बिंदुओं को खत्म करने के लिए एक नोडल अधिकारी नियुक्त किया जाएगा। उन्होंने बताया कि जिस जोन में अच्छी सफाई व्यवस्था होगी उनमें इन कचरा संवेदनशील बिंदुओं को समाप्त किया जाएगा। इस प्रक्रिया के आधार पर 3 शीर्ष जोन को सम्मानित किया जाएगा।
रोलबाग जोन की बात करें तो वहाँ पर 14 हमारे जीबीपी पॉइंट्स हैं, जिसमें से 3 हमारे बंद हो चुके हैं, उनको ब्यूटीफाई कर दिया गया है। वैसे ही अगर शाहदरा साउथ की बात करें तो 15 जीबीपी पॉइंट्स हैं, जिनमें से 14 जीबीपी पॉइंट्स को एलिमिनेट कर दिया गया है। साउथ जोन की अगर बात करें, जिसमें एट प्रेजेंट 33 जीबीपी पॉइंट्स हैं, जिनमें से हम 3 पॉइंट्स को ब्यूटीफाई कर चुके हैं और बाकी जो हमारे पॉइंट्स बचे हुए हैं, कुछ कुछ पॉइंट्स में 24 घंटे में कूड़ा वहां से उठ जाता है।
राजधानी के दक्षिणी रिज में पेड़ों की अवैध कटाई के मद्देनजर दिल्ली सरकार की फैक्ट फाइंडिंग कमेटी कल छतरपुर स्थित सार्क चौक का दौरा करेगी। फैक्ट फाइंडिंग कमेटी के सदस्य और दिल्ली सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज ने बताया कि साइट पर दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सड़क चौड़ीकरण के नाम पर लगभग 1100 पेड़ों को अवैध रूप से काटा था। इस समिति में श्री भारद्वाज के अलावा दिल्ली सरकार की मंत्री आतिशी और इमरान हुसैन भी होंगे, जो अपनी रिपोर्ट दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय को सौंपेंगे। इस कमेटी की रिपोर्ट उच्च न्यायालय को भी पेश की जाएगी। इससे पहले सरकार ने उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना पर आरोप लगाया था कि उनके मौखिक आदेश पर ही ये पेड़ काटे गए हैं। बरसात के मौसम में डेंगू के मामलों को लेकर दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज ने आज सभी अस्पतालों के प्रमुख अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। श्री भारद्वाज ने बताया कि उन्होंने अस्पतालों में दवाइयों की उपलब्धता, डेंगू मरीजों के लिए बेड की व्यवस्था और अन्य तैयारियों की विस्तृत जानकारी ली है। इसके अलावा उन्होंने डेंगू की रोकथाम के लिए आवश्यक कदम उठाने के लिए कई दिशा निर्देश जारी किए। स्वास्थ्य मंत्री ने डेंगू संभावित क्षेत्रों में फॉगिंग और सफाई अभियान को तेज करने के साथ मच्छरों की पैदावार रोकने के लिए अधिकारियों को प्रतिदिन अस्पतालों का दौरा करने को भी कहा। श्री भारद्वाज ने लोगों में जागरूकता बढ़ाने और डेंगू के लक्षणों की पहचान के लिए भी निर्देश दिए। इसके तहत सरकारी स्कूलों और सार्वजनिक स्थलों के साथ साथ सोशल मीडिया और अन्य संचार माध्यमों के जरिए डेंगू से बचाव के उपायों की जानकारी प्रसारित करने को भी कहा है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम के प्रबंध निदेशक शलभ गोयल ने आज मेरठ साउथ स्टेशन से लेकर दिल्ली के सराय कालेखान स्टेशन का निरीक्षण किया। उन्होंने बताया कि मेरठ साउथ स्टेशन बनकर तैयार हो चुका है और जल्द ही यहां नमो भारत ट्रेनों का संचालन शुरू हो जाएगा। इस स्टेशन में 3 प्लेटफार्म बनाए गए हैं, जिनमें से 2 प्लेटफार्म नमो भारत ट्रेनों के लिए और 1 प्लेटफार्म मेरठ मेट्रो के लिए होगा। श्री गोयल ने बताया कि मोदी नगर नॉर्थ स्टेशन से मेरठ साउथ तक 8 किलोमीटर का एक खंड है, जिसे जल्द ही जनता के लिए खोल दिया जाएगा। मोदीनगर नॉर्थ से मेरठ साउथ स्टेशन के बीच नमो भारत ट्रेनों का ट्रायल रन जारी है। वर्तमान में साहिबाबाद से मोदीनगर नॉर्थ तक 34 किलोमीटर के सेक्शन पर नमो भारत ट्रेन चलाई जा रही है। दिल्ली पुलिस ने अवैध रूप से शराब का कारोबार करने वाले 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। द्वारका जिले के पुलिस उपायुक्त अंकित सिंह ने बताया कि इनके पास से 274 कार्टन शराब बरामद की गई है। राजधानी में आज मौसम साफ रहा। आज का अधिकतम तापमान 32.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। न्यूनतम तापमान 25.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटों के दौरान राजधानी और आसपास के क्षेत्रों में आमतौर पर बादल छाए रहेंगे और कुछ इलाकों में बारिश भी हो सकती है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सर्वोच्च न्यायालय ने नीट यूजी पेपर लीक मामले में केंद्र सरकार, सीबीआई और राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी को रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया। दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने मुख्य सचिव और शिक्षा विभाग को शिक्षक तबादले पर पुनर्विचार करने को कहा। सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र को महिला कर्मचारियों के लिए मासिक धर्म अवकाश पर नीति तैयार करने का निर्देश दिया। उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने राजधानी में सार्वजनिक मनोरंजन पोर्टल का उद्घाटन किया। इससे मनोरंजन गतिविधियों का लाइसेंस आवेदन आसान होगा। और आईआईएमसी ने उर्दू पत्रकारिता पाठ्यक्रम के लिए प्रवेश प्रक्रिया शुरू की। फॉर्म भरने की अंतिम तारीख 19 जुलाई, परीक्षा 21 जुलाई को होगी। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।